नमस्ते। आज हम लोग सावित्री में बुक टू कैंटो 11 द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड उसमें प्रवेश करेंगे। तो ग्रेटर माइंड क्या है? लिटिल माइंड वो मन है जो जड़ तत्व के अंदर, मनुष्य के अंदर, उसकी सीमाओं में बंध गया। यानी मनुष्य का जो अब चेतना फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करती है, तो अब तक जो विकास हुआ है फॉर्म का, तो वो विकास ब्रेन का इस तरह से हुआ है, ब्रेन इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि वो मन की रैशनल माइंड तक की लेवल को मैनिफेस्ट कर सकता है। उसके आगे वो अभी तैयार नहीं है। ये रूपांतरण की समस्या है वास्तव में, क्योंकि रेंजेस ऑफ कॉन्शियसनेस है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें। एनिमल है, हाथी का सिर तो मनुष्य से बड़ा है, शायद चिंपैंजी का भी है, लेकिन चिंपैंजी और हाथी भाषा नहीं सीख सकते। शायद सीख सकें, आप पूरे जीवन भर उनको सिखाएं तो दो चार सेंटेंस सीख जाएंगे, टॉमी उठ, टॉमी बैठ, है ना, इतना सीख जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लेबर की। बच्चा आपकी नजरों से समझ जाएगा कि मम्मी क्या चाह रही है। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर अब वो फॉर्म ह्यूमन भाषा, ह्यूमन चेतना को समझ सकता है, इशारों को समझ सकता है, निगाहों को समझ सकता है, विचारों को समझ सकता है और भावनाओं को समझ सकता है, शब्दों को समझ सकता है। और यदि कोई नहीं समझता है ये सब, तो मनुष्य नहीं है। बहुत से लोग हैं जो नहीं समझते हैं, इतना क्रूड है कि उनको जब आप लेकिन होती है ना ये भाषा। मनुष्य क्या है? वो समझता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन विकसित हुआ है इन चीजों को पिकअप करने के लिए। फिर लोग कहते हैं लेकिन योगी तो इंट्यूशन ये सब हम तो जानते नहीं, क्या पता ये हो ना, क्योंकि मनुष्य का ब्रेन अभी विकसित नहीं हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे चिंपैंजी का ब्रेन रीजन को, जैसे मनुष्य रीजन के द्वारा कंप्यूटर बना लेता है या उससे कर लेता है, तो अगर कोई चिंपैंजी बोले कि कंप्यूटर और ये रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, ये तो होती ही नहीं है, क्यों, मैं तो नहीं एक्सपीरियंस करता हूं, तो उससे यही कहेंगे चिंपैंजी जी आप मनुष्य बन जाइए। तो मनुष्य कैसे बनेगा? दो स्टेज होगी, मनुष्य को देखेगा और देख करके कहेगा कुछ तो है इसमें ये बात। वो पिक्चर थी ना जंगल बुक, तो वो चिंपैंजी कहता है मैं राजा तो हूं लेकिन कोई चीज है मनुष्य के पास जो मेरे पास नहीं है। वो कहता है अग्नि फूल, एक्चुअली इट इज द एस्पिरेशन, कहता है मुझे वो चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो मैं, वो दे दो तुम छूट जाओगे, क्योंकि वो जानता है मनुष्य के पास कुछ है जो उसके पास नहीं है। वो स्टोरी में ऐसे बताया। तो चिंपैंजी को आप क्या एडवाइस देंगे? पहले तुम मनुष्य को देखो, उसका बाहरी अनुकरण नहीं करो, इमिटेट कभी मत कीजिए किसी स्पिरिचुअल बींग को, कभी उसको बाहर से इमिटेट मत करिए कि वो क्या कपड़े पहनता है, कैसे रहता है, आप एकदम सीधा गड्ढे में चले जाएंगे, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले वो देखेगा, देख के, जैसे एनिमल्स होते हैं मनुष्य के संपर्क में तो उनको बहुत देख के दे रिगार्ड अस एज गॉड्स, समझने की चेष्टा करते हैं, ऑलमोस्ट योगी के एफर्ट कि क्या हो रहा है मनुष्य का जगत, ये क्या है ये बोल रहे हैं। आप देखो कभी डॉग्स दे विल लुक एट यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अस, नहीं समझ पा रहे, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के संपर्क से उनके अंदर चेतना में चेंज आता है, ह्यूमन चेंज आता है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन चेंज बहुत अच्छा नहीं होता है, तो डॉग्स फ्लैटर करना सीख जाते हैं कि अच्छा इसको मैं अगर पूछ हिलाऊंगा तो ये मुझे रोटी देंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दे लर्न इट, उनके अंदर ये स्वाभाविक चीज नहीं है, उनके अंदर फेथफुलनेस है, फ्लैटरी नहीं है, फ्लैटरी हम डाल देते हैं अपने अंदर से। तो इस प्रकार से पहले चेतना के अंदर चेंज आएगा, चेतना के अंदर चेंज आएगा। अब चेतना क्या करेगी? वो प्रेशर डालेगी फॉर्म के ऊपर चेंज करने के लिए। फिर एक टाइम आएगा जब फॉर्म चेंज होगा, तो वो रूपांतरण का प्रोसेस है। तो अभी तक मनुष्य केवल लिटिल माइंड के जो तीन स्टेप्स जिनकी बात हुई उनको अभिव्यक्त करने के लिए उसका फॉर्म, उसका ब्रेन बना है। उसके आगे की चीज अगर उस पर प्रयास करता है तो क्या होने लगता है ब्रेन को, कहते हैं श्री अरविंद को पढ़ने से ना बहुत हैवीनेस लगती है, इट इज द साइन कि श्री अरविंद एक उच्च चेतना से आ रहे हैं। अगर आप इतनी इजिली कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो अलग माने, वो अलग बात है कि माने उसको सरल बना के, दैट इज बिकॉज शी कुड डू इट एज द डिवाइन मदर, बट श्री अरविंद ने तो सीधा वो प्रेशर ऑफ कॉन्शियसनेस है, नींद आती है समझ नहीं आता, अगर नींद नहीं भी आए पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं आता, क्यों, क्योंकि ब्रेन के अंदर सेंटर्स नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहिए, क्यों, पढ़ेंगे तो ब्रेन के अंदर सेंटर्स बनेंगे, क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट में लाएंगे ना अपनी लिमिटेड कॉन्शियसनेस को तो आपके अंदर ये चेंज होगा। अब किसी ने पूछा कि ये बड़ी विचित्र बात है ना, श्री अरविंद तो अगर कुछ नहीं लिखते तो भी श्री अरविंद रहते, क्यों उन्होंने इतने वॉल्यूम लिखे और क्यों माने कन्वर्सेशंस दिए इतने सारे, कोई योगी आप हिस्ट्री में देख लीजिए ऐसा नहीं मिलेगा, उसका कारण ये उसका सीधा फिजिकल रूपांतरण से लिंक है, क्योंकि योगीज ने क्या किया, इंट्यूशन है बताया, एक आंतरिक प्रोसेस जिससे तुम इंट्यूशन को प्राप्त करोगे, लेकिन उस इंट्यूशन को आप मैटर में कैसे एक्सप्रेस करोगे, आपका ब्रेन तो वही है, तो इसके माध्यम से उन्होंने एक ब्रिज बनाया हमारे जड़ बुद्धि जड़ ब्रेन के प्रति और उस हायर नॉलेज के प्रति जिसको अंदर में आप पा सकते हो। योगियों ने इसका दर्शन किया है, लेकिन ये योगी कहीं कहीं ब्रेन से बाहर आके उन्होंने इंट्यूटिवली कुछ देखा, देख करके उन्होंने कुछ बात कही, कभी कभी एक क्रिप्टिक ढंग से कही, जैसे कहा जाता है, मुझे पता नहीं कहानी कहाँ तक सच्ची है, कि वो एप्पल के जो फाउंडर थे क्या नाम था, स्टीव जॉब्स वो आए थे, ये यहाँ तक सही है कि वो नीम करोली बाबा से मिले थे, बहुत इंप्रेस्ड भी हुए थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रवृत्ति जागी कि मैं योग की तरफ उन्मुख हूं, तो इट सीम्स कि बाबा जी ने उनको कहा कि आप यू गो बैक टू अमेरिका एंड डू सम वर्क, मे बी ही सॉ कि ही वॉज नॉट रेडी, क्योंकि वो रियलाइज्ड बींग थे कि ये तैयार नहीं है, अभी इसको एक जीवन इसमें रमने दो। लेकिन अब इसके आगे की कहानी पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, कि उन्होंने एक एप्पल खाया और खा करके उनको दिया, ये हो सकती है सच क्योंकि बहुत सिंबॉलिक, उन्होंने कुछ देखा तो एप्पल खा के दिया, अब आप देखिए कि उसने जितने भी एप्पल हैं उसमें आधा खाया हुआ एप्पल, आपने कभी सोचा कि ये क्यों, ये इसका क्या सेंस है, आप एप्पल को जोड़ सकते हैं कई चीजों से। सो अब ये पार्ट अगेन, ये मैं आई कैन नॉट से वाउट से फॉर इट, बट ये जरूर है कि अब तैयारी नहीं है तो, लेकिन योगियों ने इनको एक्सपीरियंस किया है पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि ब्रेन तैयार नहीं है। अब आप इवन सी स्वामी विवेकानंदा जिन्होंने, अगर श्री अरविंद के बाद किसी ने एक्सप्रेशन किया है बहुत पावरफुल, इट इज स्वामी विवेकानंदा। बाकी आप देखेंगे कि एक आध किताब मोस्टली कन्वर्सेशन इस तरह की चीज है, ठीक है, एटलीस्ट नॉट इन माई, गुरु ग्रंथ साहब इज मैनी कंपोजर्स और उन्होंने भी इधर उधर से लेके किया है, कबीर जी की कुछ उलट बासियां हैं, बट नॉट दिस काइंड ऑफ लिटरेचर, प्योर स्पिरिचुअल लिटरेचर। क्यों, क्योंकि श्री अरविंद उस ब्रेन के थ्रू उन्होंने रन किया, डाउनलोडिंग फैसिलिटी हमारे अंदर भी वो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए ब्रेन के अंदर। तो ग्रेटर माइंड वो मन है जो हम साधारणतया साधारण मानवीय चेतना में नहीं अनुभव करते हैं, इंट्यूशन को नहीं अनुभव करते हैं, हमारे अंदर ये इल्यूमिनेशन आहा फीलिंग हर चीज को देख के नहीं होती है, कभी हो सकती है लेकिन हर रोज आपने डॉन को देखा और आपके अंदर एक इल्यूमिनेशन हुआ, आ ये क्या है, एक पुष्प को देखा और आपके अंदर एक इल्यूमिनेशन हुआ, आपने एक बच्चे को देखा और आपके अंदर एक इल्यूमिनेशन हुआ, एक कण को देखा धूल के कण को और आपके अंदर एक फ्लैश किया, मतलब आपको एक डिवाइन डिस्क्लोजर हो रहा है। ये ऑर्डिनरीली नहीं होता है, ऑर्डिनरीली तो अरे यार क्या धूल है गिर गया, लेकिन हम उसको वैसे नहीं अनुभव करते हैं। लेकिन ये अनुभव करने की, सृष्टि को नए ढंग से जानने की, समझने की, अनुभव करने की कैपेसिटी लिटिल माइंड के ऊपर ग्रेटर माइंड के अंदर है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस नहीं लेकिन मनुष्य से बेहतर बृहतर ग्रेटर माइंड, वही चीज जो एक मनुष्य देखता है रैशनल माइंड से, उसी चीज को ग्रेटर माइंड का बीइंग देखता है बिल्कुल भिन्न रूप से, सेम चीज है, वो उसको एक नया मीनिंग देता है, नया अर्थ देता है, नया सिंबल देता है, नई दृष्टि देता है, लेकिन ये विधाएं ये संभावनाएं छिपी हुई हैं, मनुष्य अभी उनको ऑर्डिनरीली नहीं रिसीव करता है। एक इंट्यूशन कभी कभी आने के लिए मनुष्य वर्षों साधना करते हैं या कभी आ जाती है, उसमें भी पता नहीं कितनी मिक्स्ड है, कितनी वाइटल से मिली हुई है, ब्रेन के अंदर आती वो अपना ब्रेन क्या करता है उसको फिर इफ्स एंड बट्स में बदल देता है. इंट्यूशन आती भी है तो ब्रेन उसको रैशनलाइज करने लगता है कैसे ऐसे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे कैसे संभव है, तो उसको स्पॉइल कर देता है. लेकिन ग्रेटर माइंड में शेरविंद हमें ये बता रहे हैं वे संभावनाएं जो मनुष्य के मन के परे, यानी रैशनल माइंड तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, उसके परे जो संभावनाएं, मन की ही संभावनाएं, लेकिन हम उसको नॉर्मली व्यक्ति उसको स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कहते हैं. इसलिए शेरविंद बताते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एंड द सुपरामेंटल. यदि एक चीज होती तो दो शब्द क्यों यूज करते. स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मनुष्य के मन के परे जो ग्रेटर माइंड है, जिसमें इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, रेवलेशन, राइट एक्शन, स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, सिंबॉलिक विजन, ये सारी चीजें इस ग्रेटर माइंड के अंदर है. जब पुरातन योग में, ट्रेडिशनल योग में जब लोग इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कहते हैं स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. अब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस भी क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है. स्पिरिट सर्वव्यापी है. एक कुत्ते के लिए मनुष्य इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, एक चींटी के लिए एक डॉग वर्ल्ड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, क्योंकि स्पिरिट ही है सब जगह, वो लिमिट हो रही है मैटर से. तो मनुष्य के लिए, सीमित मनुष्य के लिए ग्रेटर माइंड इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. और उसमें प्रवेश करते ही बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो तो एक ज्यादा, जैसे आप धरती के, इसको एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि फ्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, 40-45 हज़ार फीट जाती हैं, 50 हज़ार भी शायद इस अपर लिमिट है उनकी, उसके आगे क्यों नहीं जा सकती. उसके आगे जा सकती हैं वो, फिर भी आप एक ऐसे स्फीयर में प्रवेश करोगे जहां गुरुत्वाकर्षण है लेकिन बहुत कम हो गया है, अभी भी आप फ्री नहीं हो उससे आगे जाने के लिए. तो एक क्षेत्र है जहां धरती का गुरुत्वाकर्षण बहुत स्ट्रांगली एक्ट करता है, लिटिल माइंड. दूसरा क्षेत्र है जहां वो कम हो गया है, तो आप फ्रीली वास्टनेस में प्रवेश कर सकते हो, स्पीड बढ़ जाती है. आप अगर फ्लाइट को तेज होना है, कॉनरेड विमान जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना ऊपर आप जाओगे, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर का इतना रेयर है कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपकी फ्लाइट बड़ी तेज जाएगी. लेकिन वहां ले जाने के लिए दूसरी प्रॉब्लम्स है इंजिन की इसकी. तो उसी प्रकार से जब आप ग्रेटर माइंड में प्रवेश करते हैं तो थॉट चेंज कर देता अपनी गति, तीक्ष्ण हो जाता है, तीव्र हो जाता है, अति वेगवान हो जाता है, ल्यूमिनस हो जाता है, रेजिस्ट नहीं करता है, वो अपने नेचुरल होम में प्रवेश करता है जो थॉट का ओरिजिनल रेल्म है. यहां तो आके वो बेचारा क्या अंतरिक्ष का यात्री कार में बिठा दिया, कहा तुम कार चलाओ, कहेगा मैं तो पायलट हूं स्पेस क्राफ्ट का, ऐसी उसको समस्या, अडेप्ट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, लेकिन वो एक अलग अनुभव है. तो ग्रेटर माइंड में वे संभावना है मन की, जिनको हम स्पिरिचुअल माइंड कहते हैं. इसका सिंबल होता है मून, ये वैक्स और वेन होती है. अल्टीमेट ट्रूथ यहां नहीं है, लेकिन ये एक पैसेज है जिससे मनुष्य को गुजरना है अगर उसको आगे की ओर जाना है. तो पहले इस पैसेज को थोड़ा शेरविन डिस्क्राइब करते हैं. उसमें मेनली तीन लेवल्स हैं. एक है हायर माइंड. हायर माइंड क्या करता है, हायर माइंड का काम क्या है, वो ट्रूथ. अच्छा, रैशनल माइंड तक आप ट्रूथ कैसे जानते हो, आप सेंसेस से रिसीव करते हो, डेटा एनालाइज करते हो, फिर आप उसको डिड्यूस इन्फर करते हो, है ना, ये प्रोसेस है रैशनल माइंड का. हायर माइंड में क्या करते हो, आप सेंसेस से नहीं रिसीव करते हो, आप ऊपर से ट्रूथ आपके अंदर उतरता है, आप उसको फॉर्म दे देते हो. तो हायर माइंड एक फॉर्म मेकर है. तो वो क्या करता है, सत्य को इंटरप्रेट करता है वर्ड्स में, टर्म्स में. स्क्रिप्चर्स का बर्थ वहां से होता है, और वहीं पर रिलीजन्स का बर्थ होता है. आपने एक एक्सपीरियंस किया जो बहुत प्रोफाउंड है, लेकिन आपने उसको लिमिट कर दिया एक ट्रूथ में. उसके बाद जो पढ़ता है वो उसको और लिमिट करता है. ये इसीलिए गीता कहती है शब्द ब्रह्मति वर्तते, क्योंकि नहीं तो हम केवल शब्दों के जाल में, शब्दों का जो ये जगत है हायर माइंड का, जहां सब सांकेतिक रूप में है, सब कुछ सांकेतिक है, उस जगत में फॉर्म्स देता है. हायर माइंड के जब आप ऊपर जाओगे तो आपको एक दूसरा क्षेत्र आता है, वो चेतना का. अब हायर माइंड कैसा है कि एक स्टडी सनलाइट, लाइट है, आप उस लाइट में देख रहे हो, एक बेटर लाइट है. रैशनल माइंड क्या है कि आपने एक लैंप जला लिया है, लैंप में देख रहे हो. हायर माइंड में सनलाइट है, अब आप देख रहे हो. इल्यूमिन माइंड में वो लाइट आपकी आंखों में आ गई है, अब क्या करोगे, आप डार्कनेस में भी देखोगे, महाअंधकार में भी देखोगे, सन नहीं है तो भी देखोगे, तो क्योंकि अब वो लाइट आपके अंदर आ गई, तो वो जब आंखों में वो ज्योति आ जाती है, जब एक नई दृष्टि पैदा होती है चीजों को देखने की, तो वो इल्यूमिन माइंड होता है। इंट्यूटिव माइंड क्या होगा, जब आप इसके और आगे जाओगे, वो लाइट जो आपकी आंखों में है, अब आपके सारे कदम, शेरविन डिस्क्राइब करते हैं लाइक वॉकिंग ऑन स्टेप्स ऑफ फायर, वो आपकी पूरी ब्रेन में, माइंड के अंदर वो अग्नि के रूप में समाहित हो गई है। तो इंट्यूटिव माइंड तो एक सत्य को, कोई भी चीज को देखेगा तो उसके पीछे छिपे सत्य को ऐसे उजागर कर देगा इन ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। इसीलिए उसको कहा जाता है कि जैसे लाइटनिंग होती है, इंट्यूटिव माइंड की इससे कंपैरिजन है, लाइटनिंग जब होती है तो आप क्या होता है कि अंधकार में कुछ क्षणों के लिए पूरा फील्ड स्पष्ट हो जाता है, ओ उसके बाद वो चली जाती है। तो अब इल्यूमिन माइंड, अब इनको फिर से देख लें, हायर माइंड है जब लाइट है आप उसमें चीजों को देख रहे हो, इल्यूमिन माइंड जब वो लाइट आपकी आंखों में आ गई, इंट्यूटिव माइंड जब वो फायर बन के आपके अंदर, ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, तो वो जब देखते हैं आप किसी चीज को तो लाइटनिंग की तरह आप जिधर दृष्टि डालते हैं वो कुछ क्षणों के लिए वो अपीयरेंस के पीछे जो कुछ है एक फील्ड में वो आपको दिखाई दे जाता है सत्य। तो फिर अब बचा क्या, ये भी आंशिक सत्य है, इसके आगे उस चीज से जुड़ा जो जो सत्य है, यानी आप इसका एक उदाहरण ले लें, एक व्यक्ति आया बाहर से कुछ भी बात की, रैशनल माइंड उसको अपने हिसाब से समझेगा क्या है कैसा है, हायर माइंड उसको सांकेतिक रूप में देखेगा, उसकी कद काठी बोल चाल उससे वो सिंबॉलिकली समझ जाएगा कि ये जो व्यक्ति है वो वास्तव में उसकी चेतना कैसी है, वो इस पर नहीं जाएगा। रैशनल माइंड कैसे, अरे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको तो फ्रंट सीट देनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको तो हम आगे बिठाएंगे, क्यों, क्योंकि वो इग्नोरेंट, रैशनल माइंड तो ऐसे ही देखता है ना कि अगर कोई व्यक्ति ने बहुत बाहरी पढ़ाई लिखाई की है तो बड़ा महान व्यक्ति है, जस्ट बिकॉज ही इज लिटरेट, ए पर्सन मे बी लिटरेट बट अनएजुकेटेड। तो लेकिन रैशनल माइंड ऐसे नहीं समझता है, वो कहता है भाई कोई मजाक है, इतना टफ कंपटीशन है उसके बाद उन्होंने किया, आप ऐसे बोल रहे हैं कि वो अनएजुकेटेड है, तो ये आप ऐसे आप समझते हैं। हायर माइंड ऐसे नहीं देखेगा, वो दो मिनट बात करेगा उस हाईली लिटरेट व्यक्ति से और जान जाएगा कि ये एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, ठीक है। उसके आगे जब इल्यूमिन माइंड होगा वो उसके अंदर ये सबके पीछे एक प्रकाश के कण को ढूंढ लेगा, एक प्रकाश की संभावना को उसको पकड़ेगा, उसको पता चल गया है सरफेस पे क्या है, और जो इंट्यूटिव माइंड होगा उसके सामने उसका कच्चा चिट्ठा प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति तो संसार में अकेला नहीं है, उसकी पास्ट है, लाइफ, उसका फ्यूचर है, वो कनेक्टेड है सारे कई उससे, वो एक टाइप है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप है, वो बेचारा अकेला नहीं है ये दोषी, वो एक टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी है, उस टाइप का क्या। तो ओवर माइंड लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम में देखता है, वही जब उस व्यक्ति को देखेगा तो उसका कच्चा चिट्ठा प्रकट होगा, लेकिन वो जान जाएगा कि इस चीजों का लिंक कहां पर है, वो ये भी जान जाएगा कि वो किस तरफ जा रहा है, ये अनुभव उसके जीवन में क्यों आ रहा है, वो जान जाएगा ओवर माइंड के प्लेन पे कि ये अभी जो लड़खड़ा रहा है ये वास्तव में क्योंकि इसको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। इंट्यूटिव माइंड ये लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, ये तो गिरा हुआ आदमी इसने ये, लेकिन जैसे अभी बात हुई ना रावण की, तो जब ओवर माइंड देखेगा तो वो सारा देखेगा कि रावण कौन है, भगवान के पार्षद हैं, भगवान करुणा में हैं, आ गए हैं इसको भी त्राण देने, माता सीता प्रेम वश पहुंच गई हैं, करुणा है उनकी, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, भक्त ही बन जाएगा, वापस चला जाएगा, ये ओवर माइंड लार्ज स्पेसेस ऑफ टाइम। लेकिन ओवर माइंड भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर है, आगे क्या होने वाला है सृष्टि में ये ओवर माइंड नहीं जानता है। तो अब तीन लेवल्स आगे, एक हुआ इंडिविजुअल, एक हुआ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और एक ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट के अंदर जो रहस्य छिपे हैं उनको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस रिसीव करती है, वहां से जितना रिसीव करती है उतना एक्सप्रेस करती है, उसके आगे वो नहीं जानती ट्रांसेंडेंट कब एक्सप्रेस करेगा या करेगा नहीं करेगा, पर ओवर माइंड इतना बता देगा कि विश्व चेतना के अंदर क्या क्या है। तो ओवर माइंड की चेतना में कोई व्यक्ति है, अगर आप उससे पूछोगे, बहुत हाई स्टेट है, आप सोचो आप देख रहा है वो व्यक्ति का पास्ट क्या है, किधर जा रहा है, ये सब देख रहा है, उस व्यक्ति की डेस्टिनी, आप उससे पूछोगे कि लेकिन ये बताओ कि शेरविन सुपरामेंटल रेस के बारे में कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, कहेगा नहीं ये तो असंभव है. क्यों? क्योंकि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में वो चीज प्रकट नहीं हुई है. अब लोग शायद महसूस करते होंगे. लेकिन अब मां श्री अरविंद क्या करते हैं, अब ट्रांसेंडेंट में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ माइंड, ग्रेटर माइंड के परे जो है, वो स्वप्न जो भगवान ने अभी कहा ही नहीं किसी को, वो स्वप्न रिवील करेंगे. तो वो सुपर माइंड जानता है, वो जो अभी तक घटित नहीं हुआ, घटित मतलब किसी प्लेन पर, लेकिन वो जानता है क्योंकि वही डिटरमाइन कर रहा है. तो ओवरमाइंड भी डिटरमाइन नहीं कर रहा, ओवरमाइंड रिसीव कर रहा है, उसका काम है रूप ट्रांसमिट करना, ट्रांसमिट करना. सुपर माइंड इज द क्रिएटर, वो डायरेक्ट वही, तो वो जानता है. क्रिएटर से आप पूछोगे आपका क्या प्लान है, कहेंगे यस देयर इट इज. पर ओवरमाइंड के नीचे जो प्लेन्स हैं उसमें दे डोंट नो द प्लान ऑफ द क्रिएटर, पर जो अंदर है उसको वो समझते हैं, उसको जानते हैं मच बेटर देन द रैशनल माइंड. तो अब ये चीज श्री अरविंद बड़े अपने अंदाज में, इसमें बहुत ह्यूमर भी है, कुछ एक हम लोग पढ़ेंगे. द किंगडम्स एंड गॉड हेड्स ऑफ द ग्रेटर माइंड, ये पेज 260 पर है. देयर सीज्ड द लिमिट्स ऑफ द लेबरिंग पावर. लेबरिंग पावर क्या है? लिटिल माइंड. रीजन को कोई चीज, आप देखिए लोग सारे जीवन एकेडमिक परस्यूट, उसमें स्कॉलरली आर्टिकल, ये आर्टिकल वो आर्टिकल, दुनिया भर का और जितने आर्टिकल उतना कन्फ्यूजन. सडनली कोई नई चीज आ जाती है, एकदम कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे यार अब तो ये नई चीज आ गई है ना, ये होता है. तो लेबरिंग पावर क्यों? क्योंकि उसके पास कोई तरीका नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स सेंसेस इसी तरह से वो समझती है. बट बीइंग एंड क्रिएशन सीज नॉट देयर. योगी जानता है कि ये लिमिट नहीं है, इसलिए वो रैशनल माइंड के परे जाना चाहता है. नॉट बिकॉज वो इरैशनल है, बट बिकॉज वो सुपर रैशनल के बारे में उसको टोह लग गई है कि कुछ तो है जो सुपर रैशनल है, जो हमारे अंदर आता है और एक्ट करता है, हम उसको जानना चाहते हैं. फॉर थॉट ट्रांसेंड्स द सर्किल्स ऑफ मॉर्टल माइंड, इट इज ग्रेटर देन इट्स अर्थली इंस्ट्रूमेंट. जिसकी हम बात कर रहे थे, आपके पुराने समय में वो तार वाले फोन थे, लेकिन क्या ध्वनि ट्रांसमिशन की संभावना वहां तक सीमित थी? नहीं थी. इट वॉज ग्रेटर देन द इंस्ट्रूमेंट. किसी को ये भनक पड़ गई तो वायरलेस आया, फिर किसी को भनक पड़ी नहीं तो मोबाइल आ गए. ये हुआ ना, क्यों? क्योंकि पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट सीमित कर रहा है. अगर हम इंस्ट्रूमेंट को बेटर कर देंगे तो ये बेटर वे से ऑपरेट करेगा. वही चीज है, आप यहां से हेलो बोल रहे हो, वहां हेलो सुनाई दे रहा है, लेकिन वो जानता है कि इसके लिए तार नहीं चाहिए, ये एक दूसरा माध्यम हो सकता है रिसीव करने का, ट्रांसमिट करने का. क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपको अपने आप में संभावना है. The Godhead crammed into mind's narrow space escapes on every side into some vast that is a passage to infinity. So greater mind is a passage towards the infinite. तो ये इसका पूरा वर्णन है. और इसी के कारण इस सृष्टि के अंदर आशाएं जागती हैं, एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कुछ और है बियॉन्ड, क्योंकि greater mind प्रेस करता रहता है कि है, वो कहीं ना कहीं टच करता है. तो लिटिल माइंड कहता है कि कुछ तो है जो मैं नहीं जानता, तो उसको खींचता है ऊपर की ओर, ऑटोमेटिकली खींचता है. तो ये पूरा त्रिविध इसका वर्णन होता है. ए ट्रिपल रेलम ऑफ ऑर्डर्ड थॉट केम फर्स्ट, ए स्मॉल बिगिनिंग ऑफ इमेंस असेंट अबव वेयर ब्राइट इथीरियल स्काइज ऑफ माइंड. तो यहां पर अब ये ट्रिपल रेलम, इसमें सबसे पहले श्री अरविंद बताते हैं हायर माइंड का. और हायर माइंड क्या है? रिलीजन का बर्थ प्लेस है. रिलीजन क्या करता है? फिक्स कर देता है ट्रूथ को. तो कैसे फिक्स करता है? ये करोगे तो वो होगा, ये नहीं करोगे तो वो होगा. अभी देखो नवरात्र में सब सर्कुलेट हो रहा है ना, देवी माता के कितने रूप. आप पूछो क्या यही रूप हैं? किसी को एक बड़ा अच्छा आइडिया है, उसने वो अब ह्यूमन फॉर्म में भी दिखा दिए. देवी माता सर्वव्यापी हैं, उनको आप क्यों, कितनी वो उनकी मर्जी है, ये तो सिंबॉलिक रूप है. पर ओवर माइंड, हायर माइंड क्या करता है? उस सिंबॉलिक रूप को ही फिक्स कर देगा. तो आप देखोगे कि हायर माइंड से जिन लोगों ने रिसीव किए इस नॉलेज को, वो क्या कहेंगे? चतुर्भुजा देवी, अष्टभुजा देवी, दश प्रहरण धारिणी, ये होता है ना. क्यों? क्योंकि हायर माइंड ने फिक्स कर दिया फॉर्म. लेकिन आप डिवाइन मदर को बोलोगे, माँ कहेंगी ये सब तो मनुष्य के मन ने फिक्स किए, मैं तो इनके परे हूं, मुझे मेरी भुजाएं आप नहीं गिन सकते हो, यू कांट काउंट माई हैंड्स. सो बिकॉज ही इज बियॉन्ड ऑल दैट. लेकिन हायर माइंड फिक्स कर देता है और जो लोग नीचे खड़े हैं वो जब विश्वास करते हो कहते हैं हाँ यही सही है, ऐसे ही पूजा करनी है, ऐसे बैठकर इस विधि से. और फिर वो धीरे धीरे कालांतर में उसका सत्य विलुप्त हो जाता है और वो एक रिजिड कस्टम के रूप में रह जाता है. व्रत उपवास ये वो सब रिलीजन का एस्पेक्ट है, लेकिन एक सीमित उसमें वो रिलीजन बंद जाता है. वेर इज ट्रूथ इससे कहीं वास्टर है. ट्रूथ के लिए आपको स्पिरिचुअल जर्नी लेनी पड़ेगी जिसके लिए लोग तैयार नहीं है. इसीलिए एक फेज ऑफ एथिज्म जरूरी है संसार के लिए, नहीं तो वो हायर माइंड के फॉर्मुलेशन में पकड़े रहेंगे, आगे जाएगा नहीं मनुष्य. और सब सब रिलीजन्स में है. इंडिया में ये है क्योंकि योग की परंपरा है तो वी गो बियॉन्ड इट. बाकी रिलीजन्स में वो फिक्स हो गया है. 5 बार आप नहीं पढ़ोगे इस समय नमाज तो भगवान, आप वहां जाके चिल्लाओगे नहीं तो, कबीरदास जी ने कह दिया ना, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है. लेकिन नहीं बह रही हैं आप जब तक बोलोगे नहीं. हम लोग भी करते, सब हिंदू मुसलमान ये हायर माइंड के नीचे यही है. क्रिश्चियन संडे को चर्च जाओगे, संडे को आप चर्च नहीं गए तो आप पापी हो. इसके बड़े सारे रूप हैं. अभी हमारे यहाँ भी होता है आश्रम खुल गया है सबसे पहले जाके, इसमें भी अभी एक खोड़ रहती है, आई एम द फर्स्ट वन टू गो इन साइड. हाउ डज इट मैटर? भगवान यही देख रहा है आप सबसे पहले उठ के गए चाहे वो नींद आ रही हो, हम पहला नंबर हमने लगाया. सिंसेरिटी को देख रहा है, आप जाइए. लेकिन मेन चीज है इसमें अंडरस्टैंड द ट्रूथ बिहाइंड, डोंट टर्न एनीथिंग इनटू अ फिक्स्ड फॉर्मेट. पर हायर माइंड की यही प्रोसेस होती है. उसके बाद वो बताते हैं, अबव स्टूड रैंक्ड ए सटल आर्च एंजल रेस विद लार्जर लिट्स एंड लुक्स दैट सर्च द अनसीन ए लाइट ऑफ लिबरेटिंग नॉलेज शोन. तो ये इल्यूमिन माइंड है जहाँ एक प्रकाश है जिसमें वो ज्ञान को लिबरेट कर देते हैं फॉर्म्स में से, फॉर्म्स में ज्ञान. अब लोग कई बार पूछते हैं, अब पीपल थिंक कि मैं मिथोलॉजीज इंटरप्रेट करता हूँ. एक्चुअली मैं कुछ इंटरप्रेट नहीं करता हूँ, अभी मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर दूँ. पढ़ा हुआ है मैंने, क्यों कोई मैंने कोई स्पेशल स्टडी नहीं की है. बचपन में सब लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा, फिर माता जी की ग्रेस से उनके अर्थ ऐसे स्पष्ट होते हैं तो मैं उसको कह देता हूँ, कोई जरूरी नहीं ऐसे. अब लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि अच्छा विष्णु भगवान ने ऐसे किया था, ब्रह्मा जी ने वैसे किया था, अब इसका ये ऐसा उन्होंने क्यों किया था. तो अब कभी कभी मैं कहता भाई ये तो ब्रह्मा जी जाने और विष्णु जी जाने. आप जान सकते हो, ऐसा नहीं, आप अपने को अप्लाई करोगे तो जान सकते हो. लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है. इंपॉर्टेंट उसके सार तत्व को जानिए. विष्णु भगवान है, रियलिटी है, आप उनके दर्शन कर सकते हो, ये नहीं. लेकिन आप उनको फिक्स मत कर दीजिए कि आप जब तक उनको वैसे नहीं देखोगे कि आप विष्णु भगवान सामने खड़े हैं आप बोलोगे कि आपके वो बाकी दो हाथ कहाँ हैं और वो सांप जो है हम तो वही देखते आए, तो कहेंगे तू जा, तू मुझे नहीं ढूंढ रहा है, तू एक बाहरी रूप को ढूंढ रहा है. ठीक है, तो लाइट ऑफ लिबरेटिंग नॉलेज रिवील्स कि अनंतनाग क्या है. काल जिनके शैया में, वो काल की शैया के गर्भ में विद्यमान है. जब वो आंखें मूंद लेते हैं तो अज्ञान है, जब आंखें खोल लेते हैं तो सृष्टि है, ज्ञान है. यही है विष्णु भगवान. विशाल क्षीर सागर क्या है, द ओशन ऑफ मिल्क नॉलेज. दैट इज हाउ वन हैज टू लुक एट दिस. तो ये दूसरा. फिर उसके आगे फिर इंट्यूटिव माइंड है. लेकिन उसके पहले श्री अरविंद थोड़ा सा ह्यूमर भी हम लोग देखें कि इवन जो इल्यूमिन माइंड है वो चीजों को फिक्स कैसे करता है. इम्पोजिंग स्कीम्स ऑफ नॉलेज ऑन द वास्ट. 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से? प्रारब्ध, उत्कट और एक जो भी, मतलब एक उत्कट हो गया जो आपको भोगना ही है, प्रारब्ध हो गया जो आप हाँ संचित, प्रारब्ध जो इस जीवन का है, संचित जो आपका जमा. अब लोग इसको बड़े मैकेनिकली समझते हैं, आपने किसी को 100 रुपया दिया था वो आपका, इट्स डजंट मीन लाइक दैट. इट इज द अनफिनिश्ड कर्व ऑफ इवोल्यूशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट विद द फ्रीडम ऑफ द इन्फिनिट. ये नहीं कि वहां पर कोई डॉकेटेड वो आपका ये संचित कर्म है, उठा के ले जाओ यहां से, ऐसे नहीं है. आपने एक लाइन ऑफ इवोल्यूशन पकड़ी जिसको कंप्लीट नहीं किया. यू विल हैव टू कंप्लीट इट सम डे. यू कैन टेक अप मेनी थिंग्स एंड कंप्लीट इट इन वन लाइफ. दैट इज व्हाट योगा इज अबाउट. या हो सकता है कि आप एक जन्म में एक छोटा सा कंप्लीट करें अनुभव, ये हमारे ऊपर है. तो यहां उसका वर्णन है, दे क्लैम टू सिलोगिजम्स ऑफ फाइनाइट थॉट द फ्री लॉजिक ऑफ एन इंफिनिट कॉन्शियसनेस, ग्रामर द हिडन रिदम्स ऑफ नेचर्स डांस क्रिटिक द प्लॉट ऑफ द ड्रामा ऑफ द वर्ल्ड्स। ग्रामर कि ये भगवान तांडव नृत्य के ये स्टेप्स होते हैं, देखिए कितने तांडव नृत्य के होते हैं रिहर्सल्स और एक्चुअल प्रोग्राम, कोई तांडव आता नहीं है क्योंकि वो अंदर वही चीज नहीं है। आप ऐसे आप भाव में आके डांस कीजिए, आप देखिए शिवा से यूनाइट। माँ ने यही बताया था जब सहाना दी जाती हैं और वो राधास डांस कर रही हैं तो उनसे हो नहीं रही है। कहती है माँ डॉन डांस तो मैं समझ गई, राधा का डांस नहीं हो रहा है मुझसे। तो माँ कहती हैं मुस्कुरा के, तुम्हें पता है कि राधा का क्या भाव है जब श्री कृष्ण के सामने खड़ी होती है? नहीं माँ बताइए। तब उससे राधा प्रेयर, उनका ये भाव है कि हे सर्वेश्वर सब कुछ मेरा तुम्हारा है, एक एक कण कण मेरे, एक एक सेल मेरा, श्वास मेरी, हृदय की गति मेरे, रक्त का एक एक कण, मेरे विचार, मेरे संकल्प, मेरी भावनाएं सब आपके हैं, सब आपको दे रही हूँ। और आपसे जो भी मिलेगा चाहे वो मुझे प्लेजेंट लगे अनप्लेजेंट लगे, प्लेजर हो पेन हो, सब मुझे स्वीकार है प्रसाद रूप में। माँ कहती इस भाव से वहां डांस करो। तब वो बताती कि जब मैंने ऐसे डांस किया तो बड़ा अद्भुत हुआ, खो गई वो राधा भाव में, एक हो गई। सो ये डिफरेंस है। तो अगर लेकिन बाहर से ग्रामर्ड तांडव नृत्य के ये चीज है, पहले शिव का भाव तो आए। शिव का भाव क्या, जब आप धरती को देखोगे इतना ईविल ये वो, तो एक भाव है शिव का, लेट इट ऑल वैनिश। उस भाव में आप नृत्य करोगे तो ऑडियंस घबरा के चली जाएगी। तो वो कहां तक चले जाते हैं, प्रेडिक्टेड एवरी एक्ट एंड थॉट ऑफ गॉड, इट्स वैल्यूज वेट बाय द अकाउंटेंट माइंड चेक्ड इन हिज मैथमेटाइज्ड ओमनीपोटेंस। ये सब ह्यूमर है, मैथमेटाइज्ड ओमनीपोटेंस लॉस्ट इट्स डिवाइन एस्पेक्ट ऑफ मिरेकल एंड वाज अ फिगर इन ए कॉस्मिक सन। सम पूछते हैं लोग मनवंतर, एक मनवंतर इतने साल का होता है और एक उस इतने साल का होता है, तो कलयुग का तो प्रथम चरण है उसमें तो केवल अभी 4500 वर्ष हुए, अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र 400,000 साल का कलयुग चलेगा, तो ये कैसे आप बोल रहे हो कि सुप्रामेंटल ईयर आ गया? तो फिर मैं तो अपना तरीका है, मैं बोलता हूँ देखिए मैथमेटिक्स इतनी नहीं आती, एक उत्तर दे सकते हो भगवान की फ्री है कि नहीं है? हाँ भगवान तो फ्रीडम है, श्योर ना भगवान तो फ्री है ना? हाँ फ्री है। अब उन्होंने प्लान चेंज कर दिया, चेंज ऑफ प्लान, उनको चेंज करने में क्या लगता है? उन्होंने देखा कि अरे यार 400,000 साल किसी ने प्रेडिक्ट किया था वो उस समय था, अब वो जब किसी ने प्रेडिक्ट किया था उसके बाद कृष्ण जी आए राम जी आए, उन्होंने शॉर्टन कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य सफर करेगा 400,000, नहीं आई विल जंप इन टू इट एंड चेंज इट। अब उन्होंने 400,000 को कंप्रेस कर दिया, यही। और एक्चुअली सावित्री में इसका उदाहरण है, जब सावित्री में जब वो इन्वोक करते हैं वो कहते हैं एज इफ टाइम डेयर नॉट बेयर इट्स हार्ट टू गॉड प्रेस्ड वेनली अक्रॉस वन गोल्डन बार ऑफ टाइम। एक्चुअली उसमें है कि उन्होंने समय को कंप्रेस कर दिया है। विश्व योग क्या है, इंडिविजुअल योग इज टू कंप्रेस द टाइम ऑफ मेनी लाइफ इन टू वन लाइफ इन टू फ्यू मंथ्स। एग्जैक्टली वही 400,000 को आपने 5,000 में कंप्रेस कर दिया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैथमेटाइज्ड ओमनीपोटेंस नहीं, मैथमेटिक्स के हिसाब से कैलकुलेशन हमारा गणित कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये सारा उसका जोक है, ह्यूमर है। और फिर वो कहते हैं इस तरह से क्या कर देते हैं वो, दे बाउंड टू ए थ्योरम ऑफ ऑर्डर्ड बीट्स हर डीप डिजाइंस विच फ्रॉम हरसेल्फ शी हैड वेल्ड बोर्ड सेल्फ रिवील्ड इन देयर कन्फेशनल फॉर द बर्थ एंड डेट ऑफ द वर्ल्ड्स दे फिक्स्ड डेट द डायमीटर ऑफ इन्फिनिटी वॉज ड्रॉन मेजर्ड द डिस्टेंट आर्क ऑफ द अनसीन हाइट्स एंड विजुअलाइज द प्लम्बलेस व्यूलेस डेप्थ्स टिल ऑल सीम नोन दैट इन ऑल टाइम कुड बी। लास्ट में कहते हैं ट्रूथ्स दे कुड फाइंड येट वॉज देयर विजडम सर्किल्ड विद ए नॉट, ट्रूथ्स दे कुड फाइंड एंड होल्ड बट नॉट द वन ट्रूथ द हाइएस्ट वॉज टू देम अनोएबल बाई नोइंग टू मच दे मिस्ड द होल टू बी नोन द फैदमलेस हार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉज लेफ्ट अनगेस्ड एंड द ट्रांसेंडेंट केप्ट इट सीक्रेसी। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है एजेंडा में। माँ कहती हैं मजाक मतलब हंसी हंसी में, तुमने सुनी है वो लेटेस्ट ट्यूमर? क्या माँ क्या सुना है? सब कह रहे हैं महेश्वरी आ रही हैं और अपनी व्हाइट लाइट से सब विनाश कर देंगी सब चीज़ों का। तो कहते नहीं हमने सुना नहीं है, डिसाइपल ने कहते हाँ अभी लेटेस्ट ये चल रहा है। माँ एकदम पूरा जो कहते हैं, फिर उसमें दो तीन बार कहती है, कहती है कि दिस इज द लेटेस्ट गॉसिप गोइंग अराउंड, आई एम सपोज टू ब्रिंग डाउन महेश्वरी एंड विद दैट व्हाइट लाइट डिजॉल्व एवरीथिंग। जगन माता कहती है मुझे खुद नहीं पता है, लोगों को पता है। ये लाइन देखिए, विच फ्रॉम हर ओन हर डीप डिजाइन विच फ्रॉम हरसेल्फ शी हैड वेल्ड, जो माने अभी स्वयं के लिए उजागर नहीं किए वो लोगों को पता चल गया। पता है माने क्या किया है, ये जानबूझ के ऐसे, अरे हम कौन हैं कहने वाले, कुछ तो छोड़ दो। अनोएबल वंडर, भगवान को भी जॉय लेने दो ना हमसे खेलने का। आप जाओगे बोलोगे भगवान हमें सब पता है, भगवान कहें तेरे साथ खेलने का मजा नहीं है। आप बोलोगे भगवान सब पता तो जो है वो आपने बताया, लेकिन एक चीज नहीं जानता हूं, क्या? अरे जॉय ऑफ प्ले उतना ही जानता हूं जितना आप रिवील करते हो। तो कहेंगे चल तेरे साथ खेलने का मजा है, चल अब बता मैं क्या रिवील करने वाला हूं, और आप तैयार होते हैं उस रिवीलेशन के लिए। सो दिस इज दी वंडर। फिर इन ए सबलाइमर एंड मोर डेयरिंग सोर, अब इंट्यूटिव माइंड का है जो सीड्स को देखता है इत्यादि। और अंत में लेकिन अब इसमें ये पूरा है कि ये सब चढ़ने के बाद ये जो माइंड है ग्रेटर माइंड, ये सीयर सेज सेंट्स के अंदर ये अधिकांश इल्यूमिन माइंड तक चढ़ पाते हैं। बुद्ध वाज ऑन इल्यूमिन माइंड, शेरविन बताते हैं, या इंट्यूटिव माइंड में कोई रेयर विवेकानंद जी, सम ऑफ द वैदिक सीयर्स रीच द इंट्यूटिव माइंड, तो दे कुड सी सर्टेन थिंग्स, लेकिन दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। तो यहां पर अब आगे बताते हैं, लेकिन जगन माता यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन हियर दैट ग्रेट मिस्ट्री। तो यहां पर अंत में इस कैंटो के बताते हैं, बट थॉट नॉर वर्ड कैन सीज इटर्नल ट्रूथ। ये भूल मत करना कि ऋषि मुनि देवता नहीं जान सकते उनको। वन स्विफ्टर देन द माइंड ही इज एंड इज नॉट, ही मूव्स एंड मूव्स नॉट। क्या मतलब हुआ? मूव्स मतलब वो काल में अपने को प्रकट कर रहा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन उसके अंदर तो त्रिकाल में जो होने वाला है ऑलरेडी, तो आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए इसको इस तरह से कहा गया उपनिषदों में, ही मूव्स एंड ही मूव्स नॉट एंड इवन द गॉड्स कैन नॉट कैच हिम। क्यों? क्योंकि आप तो टाइम के पीछे रन कर रहे हो ना, गति के पीछे। दैट्स वाई वो केन उपनिषद की कहानी है कि वो उमा हेमवती को नहीं, इवन इंद्र कैन नॉट फाइंड हर। आप क्यों नहीं पकड़ पाते हो? क्योंकि एक्चुअली आप इसके पहले की पहुंचोगे ऑलरेडी, क्योंकि इटर्नल के अंदर त्रिकाल है, तो ऑलरेडी उसके आगे की रचना प्रारंभ हो गई। तो यू विल कीप रनिंग एंड येट नॉट बी एबल टू कैच इवन द गॉड्स विद द स्विफ्टेस्ट इंटेलिजेंट। इसलिए माँ कहती है, माई चाइल्ड आई एम मूविंग वेरी फास्ट, यू कांट कैच विद मी। तो दैट्स वाई द डिवाइन, तो द होल वर्ल्ड लिव्स इन ए लोनली रे ऑफ हर सन, इन अवर थिंकिंग्स क्लोज एंड नैरो लैम्प लिट हाउस, द वैनिटी ऑफ अवर शट मॉर्टल माइंड, ड्रीम्स दैट द चेन्स ऑफ थॉट हैव मेड हर आवर्स, बट ओनली वी प्ले विद अवर ओन ब्रिलियंट बॉन्ड्स, टाइंग हर डाउन इट इज अवर सेल्व वी टाई। कुछ लोग कहते हैं कि श्री अरविंद का योग हमको स्लाइड फॉर्म में समझाना या स्टेप बाय स्टेप, जिस दिन ऐसा शुरू होगा मतलब ये फिनिश्ड इट, क्योंकि डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऐसे होता ही नहीं है। भगवान ये मेंटल वे है, भगवान ऐसे नहीं करते हैं। वो यहां से कुछ पिकअप किया, उसको छोड़ा, साइमल्टेनियसली कुछ और उठ रहा था, साइमल्टेनियसली इज टचिंग ऑन मेनी पॉइंट्स, अवेकनिंग वन, लीविंग वन। वो शेरविंद बताते ना महेश्वरी के एक्शन में, picking up our rhythm, breaking of rhythm and picking it up again, even the swiftest intelligence cannot understand. So that is what, in our hypnosis by one luminous point we see not what small figure of her we hold, we feel not her inspiring boundlessness, we share not her immortal liberty. Thus is it even with the seer and sage, for still the human limits the divine. आप सीयर से भी पूछोगे क्या सुप्रामेंटल आया है, हमें नहीं मालूम, या हमें नहीं मालूम तो एक डेवलप्ड व्यक्ति हुआ ना, कहाँ है प्रमाण, कहाँ है? स्टिल द ह्यूमन, क्योंकि वो एक लाइन में गया है, उसने भगवान को एक रूप में देखा है, तो उसके आगे वो नहीं जान सकता है उस अनंतता को। अनंतता को टच किया है लेकिन एक पॉइंट से, तो वो अनंतता अनंत शून्य प्रवेश प्रतीत होती है। वही अनंत शून्य किसी को अनंत पर्सनालिटी के रूप में प्रकट होता है, इन्फिनिट पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड. दोनों सत्य हैं, बट हम जिस लाइन से जाते हैं तो जो अनंत शून्य में गया वो कहेगा ये मैनिफेस्टेशन तो कुछ नहीं होता है. जैसे रमन महर्षि से किसी ने पूछा था कि श्री अरविंद सुपरामेंटल डिसेंट कहते, डिसेंट फ्रॉम वेयर, वेयर विल द डिवाइन डिसेंट फ्रॉम. श्री अरविंद से ये फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि येस द डिवाइन इज एवरीवेयर बट देर आर मेनी प्लेन्स ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. तो उन्होंने बड़ा सुंदर उसका कंप्लीट ट्रूथ बताया. सो दिस इज हाउ इट इज. आउट ऑफ अवर थॉट्स वी मस्ट लीप अप टू साइट. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, टू डेवलप द साइट. ब्रीद हर डिवाइन इनलिमिटेबल एयर, हर सिंपल वास्ट सुप्रेमेसी कन्फेस. हम कितना भी जान जाए, मां आपके सामने एक शिशु समान है. डेयर टू सरेंडर टू हर एब्सोल्यूट. Then the unmanifest reflects his form in the still mind as in a living glass. The timeless ray descends into our hearts and we are wrapped into eternity. For truth is wider, greater than her forms. Forms केवल ये बाहरी मूर्तियों की बात नहीं हो रही है. जितने भी forms of thought, systems of philosophy, ये सब truth के forms हैं, ये forms हैं. विधि विधान सब forms हैं. For truth is greater, wider, greater than her forms. 1,000 icons they have made of her. ये सब icons हैं. श्री अरविंद यहाँ idol नहीं use कर रहे, icons. 1,000 icons they have made of her and find her in the idols they adore. But she remains herself and infinite.